السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. سورة المؤمن آیت 66. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی دعاؤں کا جو تذکرہ چل رہا تھا، آج کے خطبے میں بھی وہی جاری رہے گا. حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے مانگی ہیں. کوئی ذہن میں کوئی پہلو بھی ایسا تشنہ نہیں رہتا جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ فرمائی ہو، دعا نہ کی ہو. میں تو حیرت سے دیکھتا ہوں جب پڑھتا ہوں ایک خطبے میں دعاؤں کا سلسلہ، تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہوگا، لیکن اگلے خطبے میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعاؤں کا ذکر چلتا ہے. تو جہاں تک یہ چلتا ہے چلتا رہے، ان دعاؤں کا یاد رکھنا سب کے لیے مشکل ہے. اس کا میں علاج پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہ یاد رہے تو یہ دعا کیا کرو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بندے نے جو بھی دعائیں مانگی اپنے لیے یا سب کے لیے، وہ ہماری ساری ہمارے حق میں پوری فرما دے. مگر کوشش بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ حضور اکرم کی دعاؤں کا کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے یاد ضرور کر لیا جائے. پہلی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری سے ہے کہ گویا کہ وہ کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک نبی کا واقعہ فرماتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یوں لگتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس نبی کو اس قوم نے اس قدر مارا، اس کو خون آلودہ کر دیا. وہ اپنے چہرے سے خون کو پونچھے جا رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے میرے اللہ، میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. اے اللہ، میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ذکر ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ، میری قوم کو ہدایت کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں. اب کتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان سیرت ہے، انکساری ہے کہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرماتے کہ میں نے ایسا کیا تھا، یہ فرما رہے ہیں ایک نبی کا واقعہ ہے کہ ایک نبی نے ایسا کیا تھا. یہ جو ادا ہے اتنی پیاری ہے کہ اس پر जान निछावर करने को दिल चाहता है। एक दूसरी रिवायत तिर्मिज़ी किताब तफ़सीरुल क़ुरान से ली गई है। सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जंग उहद के रोज़ हुज़ूर ने यह दुआ की थी, ए अल्लाह अबू सुफियान पर लानत कर, ए अल्लाह हारिस बिन हिशाम पर लानत कर, ए अल्लाह सफवान बिन उमैया पर लानत कर। उस दिन बड़े बड़े जो दीन के दुश्मन थे उनका नाम ले लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी और अक्सर उन्हीं दुआओं के नतीजे में मारे गए, मगर कुछ बच भी गए। ये क्या वजह थी? रावी कहते हैं कि इस पर जब आप ये दुआ कर रहे थे इन तीनों के मुतल्लिक, तो उस वक्त खुदा ताला की तरफ से आयत नाजिल हुई, तेरा कुछ भी इख्तियार नहीं, खा उन पर तौबा कबूल करते हुए झुक जाए, अल्लाह खा उन पर तौबा कबूल करते हुए झुक जाए या उन्हें अजाब दे। चुनाचे इशारा इस तरफ था कि तेरी दुआएं तो मैं कबूल करता हूँ, किसी की हदायत पर तेरा कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए मैं फ़ैसला करता हूँ। और बैन ही यही वाक़या हुआ कि ये तीनों उस जंग में बच भी गए और फिर मुसलमान हो गए। एक रवायत अन साहल हज़रत साहल से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब से ली गई है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए जबकि हम खंदक खोद रहे थे और अपने कंधों पर उठाकर मिट्टी मुंतकिल कर रहे थे। उस पर हजूर ने फरमाया, ए अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी के सिवा कोई ज़िंदगी नहीं, बस तू महाजरीन और अनसार को बख्श दे। फिर बुखारी किताबु दावात बाबु दुआ से ये आयत ये हदीस मरवी है। इब्ने अबी खालिद बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सुना है, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब पर आने वाले अहज़ाब के बारे में बद्दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह जो किताब को नाजिल करने वाला है हिसाब लेने में तेज़ रफ्तार है, अहज़ाब को शिकस्त दे दे, उनको शिकस्त भी दे और उन पर ज़लज़ला बरपा कर दे। चुनाचे ये दुआ भी हुई है जो बैन ही इसी तरह पूरी हुई, हिसाब लेने में तेज़ रफ्तार है, को इस तरह खुदा ने कबूल फरमाया कि बहुत तेज़ रफ्तार आंधी उन पर चला दी और सारे कुफार के कैंप में एक ज़लज़ला बरपा हो गया। इतनी अफरा तफरी पड़ी कि लोग अपनी ऊँटनियों पर चढ़कर उनको खोलना भूल गए किलों से और उसी तरह भगाने की कोशिश की, हालांकि वो ऊँटनियाँ बंधी हुई थीं और उस पर उनको कत्ल करना पड़ा या छलांगे मार मर के पैदल दौड़ना पड़ा। तो एक ज़लज़ला बरपा हो गया था और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बैन ही इसी तरह अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। सुनन तिर्मिज़ी में उबैदत सलमानी बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बताया कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब के रोज़ ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह इनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे जैसे उन्होंने हमें सलात वुस्ता से बाज रखा यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। अब ये भी देखिए कितना अज़ीमुश्शान वाक़िया है हज़ूर की सीरत का कि ये जो ख़तरनाक दुआ है बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक दुआ है कि इनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे, ये किस बिना पर? उनके हमले की बिना पर नहीं, बल्कि उसकी वजह से नमाज़ असर वक्त पर अदा नहीं हो सकी थी और उसको फिर मगरिब में सूरज ग़ुरूब होने के बाद मगरिब से पहले पढ़ना पड़ा। तो हुज़ूर को नमाज़ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख़्याल था कि जो वजह नमाज में रोक बनती थी उस वजह को दूर करने के लिए आपने ये दुआ की, यानी उन कुफार को ही खाकिस्तर कर दे जिन्होंने हमारी नमाजों में रोक बनकर हमें इतना दुख दिया। एक रवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल से हज़रत इब्न अब्बास की है, जो रसूलुल्लाह सल्लम काफ़िले भेजा करते थे किसी मुहिम पर, उनको जो दुआएं दिया करते थे, ये उनके तसलसल में है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ौजी मुहिम में भेजे जाने वाले सहाबा को अलविदा कहने के लिए उनके साथ बकीउल गरकत तक गए, उनको रुख्सत किया, उनके लिए यूँ दुआ की, अल्लाह के राम पर रवाना हो, नीस फरमाया अल्लाह तू उनकी मदद कर, यानी उन लोगों की जिन्हें आपने काब बिन अशरफ की तरफ शरारतों का खला गमा करने के लिए भिजवाया था। ये वो लोग थे जिनको काब बिन अशरफ ने जो आग लगा रखी थी हर जगह, उन शरारतों को दफ़ा करने के लिए भेजा था। तो तफसील साथ ये बयान फरमाई कि इन लोगों की मदद फरमा, सिर्फ इतना है कि अल्लाह के नाम पर मैं तुम्हें रवाना करता हूँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। अल्लाह के नाम पर रवाना करना, अल्लाह उनका आगे पीछे ऊँच पर नीचे हर तरफ से मुहाफिज हुआ और उनकी गैर मामूली नुसरत फरमाई। फिर आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के हमला आवर होने पर ये दुआ किया करते थे, ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली गई है। रावी बयान करते हैं कि मुझे रुबह बिन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बताया कि अबू सईद खुदरी बयान करते थे कि हमने जंगे खंदक के रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या आप हमें कोई दुआ बताएंगे जो हम करें, अब तो ये हाल ये है कि दिल हलक में आ चुके हैं। उस पर आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ दुआ करो, अल्लाह मुस्तर औरातना व आमिर रुआतना, ऐ अल्लाह हमारे ऐब ढांक दे और हमारे अंदेशों को अमन में तब्दील फरमा दे। रावी बयान करते हैं कि इस दुआ के बाद खुदा ताला ने अपनी तरफ से तेज़ आंधी के साथ अपने दुश्मनों के मुंह पर थपेड़े मारे और अल्लाह ताला ने उनको हवा के साथ शिकस्त दे दी। सफ़र के मौके पर दुआ, सफ़र शुरू करते वक्त हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर जाने का इरादा फरमाते तो दुआ करते, ऐ अल्लाह सफ़र में तू ही हमारा साथी है और हमारी गैर मौजूदगी में हमारा ख्याल रखने वाला यानी हमारा खलीफा है। तो अल्लाह का खलीफा दुआ कर रहा था कि अल्लाह हमारे बाद खलीफा हो, मतलब ये है हमारे पीछे निगरान हो। तो खलीफा का माना वो नहीं है जो इसे अल्लाह का खलीफा हुआ करता है, मुराद ये जो पीछे हम छोड़ के जा रहे हैं जो हमारी सारी बातों का निगरान होगा। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस अम्र से कि सफ़र में हम कोई तंगी देखें और वापसी के वक्त कोई गम देखें। बस ये दुआ भी छोटी सी दुआ है जिसे सबको अपनाना चाहिए और सफ़र शुरू करते वक्त ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस अम्र से कि सफ़र में हम कोई तंगी देखें और वापसी के वक्त कोई गम देखें। ऐ अल्लाह ज़मीन को हमारे लिए तय फरमा दे और सफ़र को हम पर आसान कर दे। ज़मीन को तय फरमा दे से मतलब है कि मंजिलें छोटी लगें, जो लंबा सफ़र है वो छोटा नज़र आए और सफ़र की हर तंगी हम पर आसान कर दे, सब सहूलत अता फरमा दे। और जब हुजूर सफ़र से वापस लौटने लगते तो फरमाते हम लौटने वाले हैं तौबा करते हुए और इबादत करते हुए और अपने रब की हम बयान करते हुए, और जब अपने घर वालों के हाँ दाखिल होते तो कहते हम तौबा करते हुए अपने रब की तरफ लौटते हैं वो हमें कोई गुनाह बाकी ना रखे। مسلم کتاب الحج سے یہ روایت لی گئی ہے. جرح کہتے ہیں کہ مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ ان کو علی الازدی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے, پھر یہ دعا پڑھتے, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے. یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے جو خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے, اور اس کو ہم نے سفروں سے پہلے کرنے کے نتیجے میں بہت ہی مفید پایا ہے. حیرت انگیز خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں سفر کی کامیابی کے سلسلے میں. مجھے یاد ہے ہمارے لطیف صاحب جو پائلٹ ہوا کرتے تھے, وہ جب بھی جہاز پہ دشمن پر حملہ کرنے جایا کرتے تھے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے, رب ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی, سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا علی ربنا لمنقلبون. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف ایک دفعہ یہ دعا پڑھنی بھول گیا تھا اور اسی میں میں دشمن کے قابو آ گیا اور ایک لمبی قید کاٹنی پڑی. تو جب خدا دعا کی توفیق نہ دے تو پھر انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. بس یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں جن کی ہمیں توفیق نہیں ملی, اے اللہ ان پر بھی ہمارا نگران ہو, ہمارا نگبان ہو. جرح کہتے ہیں کہ مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ ان کو علی الازدی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ آن حضرت, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, تین بار اللہ اکبر کہتے, پھر یہ دعا پڑھتے, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ ہم اپنے سفر میں تو سے نیکی و تقوی اور ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو. اے اللہ ہم پر ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی مسافت ہم پر مختصر کر دے, تو ہی سفر کا ساتھی اور اہل و عیال میں ہمارا جانشین ہے. اے اللہ میں سفر کی مشقت اور برے منظر, اہل و عیال اور مال میں بری حالت میں لوٹنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جب سفر سے واپس آتے تو بھی یہی دعا پڑھتے, نیز ان الفاظ کا اضافہ فرماتے, ہم لوٹنے والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. سفر کی ایک اور دعا حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ سنن الترمذی سے لی گئی ہے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت رکھ دے. راوی کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ روانہ فرماتے یا کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے دن کے پہلے حصے میں روانہ فرمایا کرتے تھے. یہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی ایک عظیم شان مثال ہے کہ اکثر دشمن رات کو چھپ کے حملے کیا کرتے ہیں, آپ صبح طلوع ہونے کے بعد حملہ کیا کرتے تھے, اور جن کو بھیجتے تھے ان کو بھی یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرو, اور اس وقت دشمن تیار ہو جاتا تھا اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمایا کرتا تھا. ایک روایت میں جمعرات کو سفر کرنے کی سنت کا بھی پتہ چلتا ہے, اور جمعرات کو صبح کو سفر کرنے والوں کے لیے دعا ہے. اصل میں جمعے سے پہلے پہنچ کر پوری طرح اطمینان سے انسان کو اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو جانا چاہیے اور جمعے کی تیاری کرنی چاہیے. سفر میں جمعہ اچھی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجبوری ہو. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے سفر کو پسند نہیں کرتے تھے, جمعرات ہی کو سفر کو پسند فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن سفر کرنے والوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی, اے اللہ میری امت کی کہ इस तरह दुआ की, ये भी मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बेइंतहा इश्क और इज़्ज़त के बावजूद हुज़ूर की दुआ के मतलब दुआ फरमाई नहीं कभी कहा, क्योंकि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के हजूर अर्ज़ किया करते थे, खुदा से तो कोई भी कुछ फरमा नहीं सकता। तो यहाँ तर्जमा करने वालों ने ये लफ्ज़ फरमाई बेवजह इस्तेमाल किया हुआ है। जुमरात के दिन सफ़र करने वालों के लिए इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के उन लोगों के सफ़र को बाबरकत फरमा जो जुमेरात की सुबह को सफ़र पर निकलें। अलविदा के मौके पर दुआ। सुनन तिर्मिज़ी किताबुद्दावात में ये रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मैं सफ़र पर जाना चाहता हूँ, मुझे ज़ादे राह अता कीजिए। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें ज़ादे राह के तौर पर तख्वा अता फरमाए। उसने कहा, या रसूलुल्लाह कुछ और दुआ भी दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श दे। उसने कहा, या रसूलुल्लाह कुछ और दुआ भी दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे जहाँ कहीं भी तुम हो, तुम्हें जहाँ कहीं भी तुम हो खैर मुयस्सर फरमाए। एक रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्ने माजा में मरवी है कि आप बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अलविदा करते हुए फरमाया, मैं तुझे उस अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ जिसके सुपुर्द करदा अमानतें ज़ाया नहीं होती। बहुत ही कामिल दुआ है, उस अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ जिसके सुपुर्द करदा अमानतें कभी ज़ाया नहीं हुआ करती। अब एक रवायत है जो बहुत लंबी और बहुत जामे माने है दुआ के तौर पर, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और तअज्जुब है कि आपको ये सब याद कैसे रही, मगर सहाबा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें याद करना, अज़बर करने का बेहद शौक़ था, और जब तक पूरी तरह तसल्ली ना पाते थे कोई फर्जी बात रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ मंसूब नहीं किया करते थे। तो हज़रत अब्बास का, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम पर एहसान है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस लंबी नसीहत को याद रखा और लफ्ज़न लफ्ज़न हम तक पहुँचाया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि एक रात जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैंने आपको ये दुआ करते हुए सुना, ऐ अल्लाह मैं तेरे हुजूर से रहमत चाहता हूँ जिसके ज़रिए तू मेरे दिल को हदायत अता फरमाए और मेरे मामले बिखरे हुए मामले को मुश्तमे कर दे और मेरी परागंदगी को जमा कर दे यानी दूर कर दे और मेरे गायबाना उमूर की इसलाह फरमा दे और इसके ज़रिए मेरी ज़ात को रफ़ा बख्श दे यानी ज़ात को अपने दरजात की बुलंदी अता फरमाए और मेरे अमल को पाक फरमा दे और इसके ज़रिए मुझे मेरी हदायत इल्हाम फरमा और इसके ज़रिए मेरी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली दोस्तियों को दूर फरमा दे जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के हवाले से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से है सिर्फ, यानी हुब्बु फिल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह के हवाले से मोहब्बत होनी चाहिए और इसके ज़रिए से मुझे हर बुराई से बचा ले। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ईमान और यकीन दे कि जिसके बाद कोई कुफर ना हो और ऐसी रहमत अता फरमा कि जिसके ज़रिए मैं दीन और दुनिया में तेरी इज़्ज़त हासिल करने का शरफ़ हासिल कर पा सकूँ। तेरी इज़्ज़त से मुराद जो तूने इज़्ज़त मुझे अता की वो इज़्ज़त मुझे पसंद है, गैरुल्लाह की इज़्ज़त मुझे कोई महबूब नहीं, उसकी कोई भी कीमत मेरे नज़दीक नहीं, बस मुझे वो इज़्ज़त अता कर जो तेरी जनाब से नाजिल हो और शोहदा किसी मेहमान नवाजी اور سعاد مندوں جیسی زندگی اور دشمنوں کے خلاف نصرت مانگتا ہوں. شہداء کی سی مہمان نوازی, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی مہمان نوازی اور ان کو رزق دینے کا خود فیصلہ فرمایا ہے. سب کو خدا ہی رزق دیتا ہے, مگر جن کے متعلق خصوصیت سے فرماتا ہے کہ میں ان کا مہمان نواز ہوں, ان کو رزق اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس شان اور مرتبے کا ہوگا. تو آن حضور اللہ تعالیٰ سے شہداء جیسی مہمان نوازی مانگتے تھے اور سعادت مندوں جیسی زندگی اور دشمنوں کے خلاف نصرت مانگتا ہوں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب شہیدوں کے بڑے شہید تھے. کوئی شہید کائنات میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرتبے میں شہادت کے مقام کو پا چکا ہو, مگر پھر بھی عز کا یہ حال تھا کہ جانتے تھے سب کچھ دعاؤں کی برکت سے ہی ہے. بس دعا کرتے تھے کہ مجھے شہیدوں جیسی مہمان نوازی اور سعادت مندی عطا فرما اور دشمنوں کے خلاف میں تجھ سے نصرت مانگتا ہوں. اے اللہ, میں اپنی حاجت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں, اگرچہ میری رائے اور میرا عمل کمزور ہے, حیرت انگیز ہے. سب آراء سے بڑھ کر قوی راہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی, سب اعمال سے بڑھ کر مضبوط عمل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ان کی ساری کی حد ہے, میری رائے اور میرا عمل کمزور ہے. اب کی رائے تو اتنی قوی تھی کہ جب مشورہ مانگا کرتے تھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اس لیے مشورہ مانگتے تھے کہ صحابہ کو تقویت ملے, کہ ان سے بھی پوچھا گیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب فیصلہ کرے تو تو نے فیصلہ کرنا ہے, اور جب تو فیصلہ کرے گا تو اللہ پر توکل کر, پھر اللہ ضرور تیرے فیصلے میں برکت ڈالے گا. دیکھیے, طاقت آپ نے حاصل کہاں سے کی؟ ان دعاؤں ہی کے ذریعے سے. اگرچہ میری رائے اور میرا عمل کمزور ہے, میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. بس اے امور کا فیصلہ کرنے والے اور اے دلوں کو شفا دینے والے, مجھے آگ کے عذاب سے بچا, میرے اور آگ کے درمیان فاصلہ ڈال دے, جیسے تو نے سمندروں کے درمیان باہم فاصلہ ڈال دیا ہے. نیز مجھے ہلاکت خیز پکار سے بچا اور قبروں کے فتنے سے بچا. اے اللہ, جس خیر کا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی سے وعدہ کیا ہے, یا وہ خیر جو تو اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے والا ہے, میری نظر اس تک پہنچنے سے قاصر رہی ہے اور میری خواہش اس تک نہیں پہنچ سکی, اور میرا سوال بھی اس تک نہیں پہنچ سکا. میں اس میں تیرے حضور اپنی رغبت کا اظہار کرتا ہوں, اور اے رب العالمین, تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے وہ مانگتا ہوں. اے حبل شدید اور امر رشید کے مالک رب, میں بعید کے دن تجھ سے امن اور ہمیشہ رہنے والے دن, تجھ سے گواہی دینے والے مقربین اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں اور وعدہ وفا کرنے والوں کے ساتھ جنت مانگتا ہوں. یقیناً تو بہت رحیم اور محبت کرنے والا ہے, اور تو جو چاہے کر سکتا ہے. اے اللہ, ہمیں ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والے بنا, گمراہ ہونے والے یہ گمراہ کرنے والے نہ بنا, اپنے دوستوں کے لیے باعث سلامتی اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا. تیری محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور تیری خاطر عداوت کی وجہ سے تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے ہوں. یعنی اس لیے کہ جو تجھ سے عداوت کرتے ہیں دشمن, ہم اپنی دشمنی سے نہیں بلکہ تیری دشمنی کی وجہ سے جو وہ رکھ کرتے ہیں ان سے دشمنی کرنے والے ہوں. اے میرے دعا, اے میرے خدا, میری اس دعا کو قبول کر. اس دعا کو قبول کرنا تیرا ہی کام ہے, یہ کوشش ہے اور توکل تجھی پہ ہے. اے اللہ, میرے دل میں نور پیدا فرما, اور میری قبر میں بھی نور رکھ دے, اور میرے آگے بھی اور میرے پیچھے بھی اور میرے دائیں بھی اور میرے بائیں بھی نور رکھ دے. मेरे ऊपर भी नूर रख दे और मेरे नीचे भी, मेरे कानों में भी नूर रख दे और मेरी आँखों में भी, मेरे बालों में भी नूर अता फरमा और मेरी जिल्द में भी नूर अता फरमा, मेरे गोश्त में भी नूर अता फरमा और मेरे खून में भी और मेरी हड्डियों में भी नूर अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे नूर को अजीम तर कर दे और मुझे नूर ही नूर अता फरमा। पाक है वो जिसने बुजुर्गी का लिबास पहन रखा है और इस बुजुर्गी की वजह से बहुत मौजूद हो गया। पाक है वो जिसके बगैर किसी को तस्बीह ज़ेबा नहीं। पाक है वो जो फजल और नेमतों का मालिक है। पाक है वो जो मजद और बुजुर्गी का मालिक है। पाक है वो जो साहिब जलाल व इकराम है। अब ये दुआ ऐसी अजीम शान दुआ है कि इसका कोई पहलू भी इंसान का की ज़रूरतों का पीछे नहीं छोड़ा नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगर उसको शुमार कर लिया, और वो सारे पहलू जो छोड़े जा सकते हैं इंसान से, ख्याल भी नहीं जा सकता उन तक, वो भी आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें शामिल कर लिए हैं। क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि किसी की ज़रूरतें क्या हैं, किसी के ख्याल क्या हैं। इसलिए जो दुआ में बातें मुहित ना हो सकें, अल्लाह ताला ही सब चीज़ों पर मुहित को पर अहाता करने वाला है। बस आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए वो सारी दुआएं हमारे लिए मांग लीं जो हमारा ओढ़ना बिछौना होनी चाहिए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से खुदा की पनाह मांगना चाहते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ऐ अल्लाह मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन लाजमा है। आज दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो भूख का शिकार हैं, और अहमदी अपनी तौफीक के मुताबिक जो हद तक कुछ हो सकता है करते हैं और कर रहे हैं, मगर हकीकत यही है कि हमारा चारा कुछ भी नहीं सिवाय दुआ के। दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया से भूख की लानत को दूर कर दे और उन लानतों को दूर कर दे जिनकी वजह से भूख की लानत लोगों पर, गरीबों पर पड़ी हुई है। उनको कोई हिस्स नहीं, सिर्फ हुकूमत करना उनका काम है। उनको इससे क्या परवाह कि किस तरह भूखे तड़पते और मरते हैं। बस अल्लाह ताला के हजूर आज़ूर के लिए दुआ मांगा करें, ऐ अल्लाह मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन लाजमा है, और मैं ख़यानत के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन राजदार है। अब भूख के साथ ख़यानत का क्या ताल्लुक़ हुआ? वाक़िया ये है कि अगर दुनिया के हुक्मरान ख़यानत ना करें तो दुनिया को कभी भूख की सज़ा ना मिले। लाजमन ख़यानत के नतीजे में दुनिया में गुरबत और भूख फैली हुई है, क्योंकि सारे अपने फ़राइज़ में ख़यानत करते हैं और हज़ार किस्म की ख़यानतें करते हैं, जिसके नतीजे में सारी दुनिया पर भूख की आफत पड़ी हुई है। तो ये राज है कि हुज़ूर ने भूख से पनाह मांगते हुए साथ ख़यानत के शर से पनाह मांगी है, क्योंकि ये बदतरीन राजदार है। अब ख़यानत बदतरीन राजदार किस तरह हो गई? ख़यानत इंसान छुपाता है और ज़ाहिर होने की कोशिश करता है कि ज़ाहिर ना हो, और अंदर ख़यानत जानती है नफ्स को और खाइन को। तो ये ऐसा राजदार है जो नहायत ही बदतरीन राजदार है। बस दुआ किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें ख़यानत जैसे बदतरीन राजदार से बचाए। एक रवायत मुस्लिम किताबुल ज़िक्र से हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ली गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से इब्ने उमर के नज़दीक ये दुआ भी थी कि ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमत के ज़ाहिर होने से, तेरी तरफ से मिलने वाली आफ़ियत के छोड़ जाने से, तेरी नाराज़गी के अचानक वारिद होने से और तेरी जुमला नापसंदीदगियों से तेरी पनाह में आता हूँ। कई लोग हैं जिन पर खुदा की तरफ से बड़ी नेमतें नाज़िल होती हैं, मगर वो अपनी जहालत की वजह से उनको ज़ायल कर देते हैं, ज़ायल होने देते हैं, गलत सौदे करते हैं, गलत तिजारतों में पड़ते हैं, जबकि उनको तिजारतों का सलीका ही कोई नहीं होता, तो वो नेमत जो खुदा की तरफ से मिलती है वो उसे बिल्कुल ज़ायल कर देते हैं। बाद लोगों को अल्लाह ताला लाखों करोड़ों की जायदाद अता फरमाता है, वो आखिर पर भिकमंगे बन जाते हैं, कुछ भी उनके पास बाकी नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने तो नेमत दी, मगर नेमत वसूल करने वालों ने कदर ना की। बस फरमाते हैं ये इब्ने उमर बयान करते हैं कि रसूल सल्लम ने ये दुआ बतौर ख़ास सिखाई थी कि मैं तेरी नेमत के ज़ायल होने से, तेरी तरफ से मिलने वाली आफ़ियत के छोड़ जाने से, तेरी नाराज़गी के अचानक वारिद होने से और तेरी जुमला नापसंदीदगियों से तेरी पनाह में आता हूँ। बाद इंसान को पता नहीं चलता कि नाराज़गी जमा हो रही है और बाद वो अचानक फट पड़ती है, अपने शर में पड़े रहते हैं और बेहूदगियों में मुबतला रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दिन ये सब चीज़ें इकट्ठे होकर एक आतिशफिशां की तरह, पहाड़ की तरह फट जाएंगी, जो अल्लाह के हुक्म से होगा। बस अचानक फटने वाले अजाब से भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की दुआ से दुआ मांगा करते थे उसे बचने के लिए। एक रवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज में दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह मैं आग के फितने और आग के अजाब और अमारत और गुर्बत के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ, क्योंकि अमारत का भी एक शर है और गुर्बत का भी एक शर है। अल्लाह ताला दोनों शरों से जमात को हमेशा महफूज रखे। एक सुनन अबी दाऊद में अन शक्ल इब्ने हुमैद रवायत है, शक्ल बिन हुमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मुझे कोई दुआ सिखा दें। इस पर आपने फिर फरमाया, ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ अपने कानों के शर से, अपनी आँखों के शर से, अपनी ज़ुबान के शर से, अपने दिल के शर से और अपनी शर्मगाह के शर से। एक रवायत ज़ियाद बिन इलाक़ा की सुनन तिर्मिज़ी में मरवी है, ज़ियाद बिन इलाक़ा अपने चचा से रवायत करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मैं नापसंदीदा अखलाक और अमाल और ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगता हूँ। इब्ने माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रवायत दर्ज है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की पनाह तलब करो फ़क्र से, क़िल्लत से, ज़िल्लत से और इससे कि तू ज़ुल्म करे या तुझ पर ज़ुल्म किया जाए। एक रवायत इब्ने माजा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने एक रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर मौजूद ना पाया, मैंने आपको टटोलना शुरू किया तो मेरा हाथ आपके पाँव के तलवों से जा टकराया। अब ये बात सोच लेनी चाहिए कि ये ज़मीन का बिस्तर था, वो चरपाई नहीं बची हुई थी। ज़मीन के बिस्तर पे आपने देखा कि रसूल सल्लम कहाँ हैं, तो जो टटोला तो हाथ आपके तलवों से लगा, आप सजदे में थे, आपके पाँव खड़े थे और आप ये दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाराज़गी की बजाय तेरी रज़ा का तालिब हूँ, तेरी गिरफ्त की बजाय तेरे दरगुजर का तालिब हूँ और मैं तुझसे तेरी पनाह का तालिब हूँ, मैं तेरी तारीफ़ का हक अदा नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जैसा कि तूने अपनी सना खुद बयान की है। अभी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि एक रवायत तिर्मिज़ी किताबु दावात में दर्ज है, बयान करते हैं कि एक शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैंने रात को आपकी दुआ सुनी थी और उसमें से जिस कदर मुझ तक पहुँच सकी वो ये थी कि आप कह रहे थे ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुझे बख्श दे और मेरा घर मेरे लिए वसी फरमा दे और जो कुछ तूने मुझे रिज़्क अता फरमाया है उसमें बरकत अता फरमा। इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो क्या इन कलमात ने कोई बात पीछे छोड़ दी है जो तुम उससे कुछ और सुनना चाहता है। अब ये देखें छोटी मगर बहुत ही जामे माने दुआ है, मेरे गुनाह मुझे बख्श दे, मेरा घर मेरे लिए वसी फरमा दे और जो कुछ तूने मुझे रिज़्क़ अता फरमाया है उसमें बरकत अता फरमा। घर वसी फरमा दे से मुराद सिर्फ अपना ज़ाती घर नहीं है बल्कि वस मकाना का इल्हाम जिस तरह ज़ाहिर करता है सलाम का घर वसी किया गया। गौर करें तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े कुंबे का परवरिश करने वाला पाया, आयल थे आप और उस कुंबे की निगहदाश्त आपके सुपुर्द थी यानी सारी दुनिया के बनी नौ इंसान, तो आपका मकान वसी कर दिया और इतनी वसत अता फरमाई कि तमाम दुनिया पे मुहित हो गया। दुआ सुनने वाले को पूरी समझ ना आ सकी कि ये क्या कितनी अजीम शान दुआ है। उसने जब पूछा कि या रसूलल्लाह कुछ और, तो आपने फरमाया कि इसमें कुछ रह गया है बाकी सारी कायनात सारा आलम तो इसके अहाते में आ चुका है, क्या बाकी रह जाता है, और जो रिज़्क़ अता फरमाया उसमें बरकत दे। कोई पहलू दुआ का बाकी नहीं छोड़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शैतान और मूजी जानवरों से पनाह की दुआ भी सिखाई। बुखारी किताब अहादीसुल अंबिया बाब यूज़िफ़ून नस्लान फिल मशी में ये रवायत है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को तावुज़ सिखाया करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे जद्दे अमजद इब्राहीम इस्माइल और इसहाक के लिए ये तावुज़ बड़ा करते थे, आउज़ु बे कलिमातिल्लाहि तामते मिन कुल्ले शैतानिन वहामते व मिन कुल्ले ऐनिल लामते, यानी मैं अल्लाह के हर लिहाज से मुकम्मल कलमात के ज़रिए हर शैतान हर मूजे कीड़े मकोड़े और हर मलामत करने वाली आँख से पनाह चाहता हूँ। फिर मुसनद अहमद बिन हम्बल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत समझ में किसकी रिवायत है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर बहरहाल ये मुसनद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत ज़दा की दुआ ये है कि ऐ अल्लाह तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए पलक झपकने की मुद्दत के लिए भी अपने नफ्स के सुपुर्द न कर। तो गोया मुसीबतें सारी अपने नफ्स से ही आयद होती हैं, बाद मुसीबतें अचानक हादसात से भी पैदा हो जाती हैं, मगर असल जो मुसीबत है वो है जो अपने नफ्स के शर से, उसका फिर कोई इलाज नहीं हुआ करता। आपने फरमाया ये दुआ करो कि पलक झपने की मुद्दत के लिए भी अपने नफ्स के सुपुर्द मुझे ना कर और मेरे हर मामला की इस्लाह फरमा दे। इसमें जो बैरूनी मुसीबतें हैं उसका भी हल आ गया, हर मामला की इस्लाह फरमा दे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इन दुआओं की कबूलियत का राज तौहीद कलबे तौहीद ही में है। अगर ये तवक्कुल रहे कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं तो फिर सब दुआएं मकबूल हो सकती हैं, अगर तवक्कुल दूसरों पर हो और दुआएं खुदा से मांगी जाएं تو یہ محض اپنے نفس سے دھوکہ کرنا ہے. اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دو تین اقتباس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہی کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بعد میں چلے گا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے متعلق دو تین اقتباسات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو شخص دنیاوی حکام کے بالمقابل شوخی کرتا ہے وہ بھی ذلیل کیا جاتا ہے, پھر اس کا کیا حال ہوگا جو خدا تعالیٰ کے فرستادہ کے حکم کے ساتھ شوخی اور گستاخی سے پیش آتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یا اللہ مجھے ایک آنکھ جھپکنے تک بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر. پھر ملفوظات میں یہ روایت ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی استراری ہو تو اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے. اور میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے. ہاں آج کل کے زمانے کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی, اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. پھر آخری اقتباس الحکم 24 ستمبر 1904 سے لیا گیا ہے. قرآن شریف کے 30 سپارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں, لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. مگر میں وہ تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے, دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا انشاءاللہ. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.